الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدیق اقص حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الامي والي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حاضرین محفل خواتین اور حضرات جو یہاں پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2020 سے ہم نے یہاں جامع مسجد امیر حمزہ میں 9 روزہ محافل محرم کا اہتمام کیا اور الحمدللہ یہ تمام محافل بہت کامیاب رہی آپ حضرات نے عقیدت اور محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان میں شرکت کی 2020 میں ہم نے جو موضوع رکھا وہ تھا اہل بیت کے 12 امام دوسرے سال ہم نے موضوع رکھا عشرہ مبشرہ اور ذکر اہل بیت تیسرے سال ہم نے موضوع رکھا امہات المومنین اور ذکر اہل بیت چوتھے سال ہمارا موضوع تھا عقائد اہل سنت اور ذکر اہل بیت اور الحمدللہ یہاں پر یہ 5واں سال ہے اور اس مرتبہ ہم نے موضوع رکھا ذکر و فکر اہل بیت. آپ حضرات اسی ذوق و شوق کے ساتھ تمام محافل میں شرکت کریں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات رکھیں جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے متعلق ہوں، تاکہ عوامی اہل سنت کی اصلاح بھی ہو، ان کے عقائد مضبوط اور مستحکم بھی ہوں، اور وہ کسی شک اور شبے میں نہ پڑے. مختلف موضوعات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے روزانہ گفتگو ہوگی، اور 6 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی ذکر اہل بیت شروع ہوگا. آج کا موضوع ہے ہمارا علم اور عمل. علم کے معنی ہے جاننا، علم کے معنی ہے معلومات، علم کے معنی ہے نالج. اسی لیے جو علم کو جانتا ہے اسے عالم کہتے ہیں. عالم کے معنی جاننے والا. علوم بے شمار ہیں، ظاہری علوم، باطنی علوم، دینی علوم، دنیاوی علوم، اگر آپ ان کی فہرست بنائیں تو بے شمار علوم ہیں. لیکن ان تمام علوم میں سب سے افضل علم دین کا علم ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم کا خزانہ ہے. جو ہو چکا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ آپ دیکھنا چاہیں وہ قرآن میں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دنیا کا علم قرآن میں رکھا، یا ہم نے دین کا علم قرآن میں رکھا، یا ہم نے مخلوقات کا علم قرآن میں رکھا، یا ہم نے نباتات و جمادات کا علم قرآن میں رکھا، یا ہم نے زمین و آسمان کا علم قرآن میں رکھا. ایک جامع جملہ فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اب آپ دیکھیں قرآن ایک فصیح کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور فصیح کلام وہ ہوتا ہے کہ جملہ ایک ہو اور اس میں سمندر موجزن، یعنی ایک بات میں سب کچھ ہو. تو کسی علوم کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا نہیں، ہائی لائٹ نہیں کیا کہ یہ چیز قرآن میں ہے، یہ چیز قرآن میں ہے. ایک جامع بات کہہ دی، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، الا فی کتاب مبین. اب آپ پوری کائنات کا جائزہ لیں تو پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یا تو خشک ہیں یا تر ہیں. جتنی چیزیں ہیں نا پوری کائنات میں، آپ دیکھیں یا خشک ہیں یا تر ہیں. تو قرآن نے کہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، تمام علوم کا مجموعہ ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. تو سب سے افضل علم کون سا ہوا؟ دین کا علم، جو قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا ہے. اچھا، علوم کے لیے اسلام میں ان کے حصول پر کوئی پابندی نہیں ہے. مثلا مسلمانوں پر پابندی نہیں کہ جی آپ دنیاوی علوم حاصل نہیں کر سکتے، آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے، آپ فرانسیسی نہیں پڑھ سکتے، آپ فلاں زبان نہیں پڑھ سکتے، کوئی پابندی نہیں. جتنے علوم ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین کا اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے دین پر پوری طرح عمل کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں. یہ نہیں کہ اگر عالم پڑھاتے تو آپ نے پڑھ لیا، نہیں پڑھایا تو نہیں پڑھا. آپ کوشش کریں جہاں علم ملے آپ وہاں پہنچیں، علماء کی مجالس تیار کریں، علماء کی محافل میں جائیں، مشائخ کی محافل میں جائیں، वहां पर आप जाएंगे, बैठेंगे, कान में दीन की आवाज, दीन का इल्म, दीन के अहकाम पहुंचेंगे, आपको इल्म हासिल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए दीन का इल्म हासिल करना जरूरी है। जहां भी आपको ऐसी महाफिल मिले आप जरूर जाए। अच्छा, दुनियावी उलूम आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ऐसा इल्म जो आपको दीन से दूर कर दे आप उससे दूर हो जाइए। जो इल्म आपको दीन से दूर कर दे आप उससे दूर हो जाइए। दीनी उलूम और दुनियावी उलूम दोनों आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि आज का नौजवान जब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है, या कोई किसी इल्म में कमाल हासिल करता है, तो दीन पर एतराज करना अपना पैदाइशी हक समझता है। ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, दीन पर एतराज। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप डॉक्टर बने लेकिन मुसलमान डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने लेकिन मुसलमान इंजीनियर बने, आप वकील बने लेकिन मुसलमान वकील बने, आप जज बने लेकिन मुसलमान जज बने। कोई भी दुनिया का इल्म हासिल कर ले, लेकिन आप पहले मुसलमान हैं, बाद में आप कुछ और। ठीक है ना? मुसलमान होना ये हमारी शिनाख्त है। और अगर हम इल्म हासिल करके, दुनियावी उलूम हासिल करके अपने दीन ही पर एतराज शुरू कर दे, आप देख रहे ना कैसे कैसे लोग एतराज कर रहे। कोई इतराज कर रहे कि हज पे जो कुर्बानी होती है इतने ये जानवर जाया होते हैं, इससे जो है आप किसी बेवा की, वो किसी गरीब बच्ची की शादी करा दें, किसी बेवा की मदद कर दें, किसी यतीम की मदद कर दें, ये कोई बात है? कुर्बानी इतनी हो रही है, इसमें पैसे जाया हो रहे हैं। यानी जो शाइर इस्लाम है, जो इस्लाम ने आप पर वाजिब या फर्ज करार दिए हैं, उन पर भी एतराज हो रहा। तो इसलिए दीन का इल्म हासिल करें, दुनिया का इल्म हासिल करें, लेकिन दीन पर एतराज न करें। दीन पर एतराज वही करता है जो दीन से नाबलद, दीनी मालूमात नहीं है, इसीलिए एतराज शुरू कर दे। दूसरी बात बड़ी अहम है, ये मैं अपना मौजू शुरू करने से पहले थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूं, इसीलिए कि कुछ चीजें हमारे सामने आई जो बयान करना जरूरी है। वो ये है, सोशल मीडिया पर आजकल भरमार है मैसेजेस की, क्लिप्स की और दीगर चीजों। अगर आप मजहबी तौर पर देखें तो वजीफा जिसने देखा वो उस पर व्हाट्सएप पे डाल दिया, ये शादी का वजीफा है, तो ये बच्चे होने का वजीफा है, तो ये दौलत का वजीफा है, ये नौकरी का वजीफा है, जिसने देखा डाल दिया। इसी तरह दीगर चीजें, किसी को कोई हदीस मिली तो वो डाल दी, ना उसका कोई हवाला है, ना कोई उसका निशान है, कहां से आपने ली, क्या की, फौरन डाल। इसलिए सोशल मीडिया पर जो कुछ हो बगैर किसी मुस्तनद आलिम की इजाजत या मुस्तनद शेखे तरीकत की इजाजत के बगैर कभी अमल ना करें। बहुत सी आदीज ऐसी, मेरे पास एक साहब ने हदीस भेजी, इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा यह हदीस तो मेरी नजर से गुजरी और आपने इसका कोई हवाला भी नहीं दिया ताकि आदमी चेक कर ले कि भाई बुखारी में है, मुस्लिम में है, फला जगह। तो इसलिए याद रखिए कि जो भी इस किस्म की चीज हो उलमा से उसकी तस्दीक करें, कोई वजीफा हो मशाइख से उसकी तस्दीक करें, फिर आप उस पर अमल करें। अच्छा, हमारी कैफियत क्या है कि दुनियावी तौर पर तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो बड़ी सोच विचार करते हैं, बड़े गौर फिक्र करते हैं। मसलन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, शुरू से आप साइंस लेते हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आप वकील बनना चाहते हैं, कानून ला पढ़ना चाहते हैं, लॉ कॉलेज में जाते हैं। ठीक है ना? जो इल्म हासिल करना चाहते हैं उसके माहिर से हासिल करते हैं, यही करते हैं ना, और तरीका भी यही होना चाहिए कि आदमी जो इल्म हासिल करे देखे कि इस इल्म में कौन माहिर है, कौन ये इल्म पढ़ा सकता है, किससे इल्म सीखा जा सकता है, उसी के पास आदमी जाएगा जब भी कामयाब हो। भाई डॉक्टरी पढ़ने वाला अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाए तो क्या हो, और लॉ पढ़ने वाला मेडिकल कॉलेज में चला जाए तो क्या हो। जो इल्म जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है उसके माहिरीन वही मौजूद है, यकीन करें हम उन्हीं के पास जाते हैं। ये क्या है, दुनियावी तौर पर हम बड़ी एहतियात करते हैं, अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना है, अगर इंजीनियर बनना है तो एनडी यूनिवर्सिटी जाना है, अगर लॉ पढ़नी है तो लॉ कॉलेज जाना है, ये सारी चीजें। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब दीन का मामला आता है तो हर किसी के पीछे चले जाते हैं, हर किसी के पीछे चले जाते हैं, ये नहीं देखते इसने दीन का इल्म हासिल किया भी है या नहीं। हर इंजीनियर पलंबर कमरे में बैठकर दीन बयान कर रहा है उसके पीछे लोग चले जाते, कितने नौजवान इंजीनियर की वजह से गुमराह हो गए, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या आपने देखा कभी उसने किसी से इल्म हासिल किया, उसने दीन का इल्म कहां से हासिल किया, नहीं उसके पीछे चलना शुरू हो। अगर इस तरह करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जय्यद उलमा मौजूद है, जय्यद मशाइख मौजूद है। अच्छा आप ये कहेंगे नहीं कि नहीं ये तो उलमा ऐसे होते हैं, याद रखिए हर शोबे में अच्छे और बुरे सब होते हैं, हर शोबे में। अगर कोई डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दे और किसी डॉक्टर की गलत दवा देने से किसी की मौत वाकई हो जाए तो आप सारे डॉक्टरों का बायकॉट कर देंगे, जिस मुल्क में जितने डॉक्टर हैं सारे ऐसे ही हैं, ये सब मरीजों को मार रहे हैं, कैसा होगा। इंजीनियरिंग में कोई फेल हो जाए, किसी ने गलत काम कर दिया तो सारे इंजीनियर गलत हो गए, नहीं, हर शोबे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं बुरे भी मौजूद। इसी तरह दीनी लिहाज से भी ऐसे लोग दीनी तबके में दाखिल हो गए हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो रहबर के रूप में रहजन हैं, बजाय रहबरी करने के बजाय गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए, जय्यद उलमा की सोबत इख्तियार कीजिए, जय्यद मशाइख की सोबत इख्तियार कीजिए और दीन का इल्म सही लोगों से हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। बात समझ में आई, तो इस तरह हमें करना है। अब आइए आगे चले, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम है, फर्ज है, जरूरी, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर जोर दिया, कसीर अहादीस मौजूद है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इल्म हासिल किया नबी पाक अलैहिस्सलाम से। अच्छा ये तो मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जबानें इतनी दराज की के बारगाहे रिसालत तक पर इतराज कर, एक दूसरे पर तो इतराज हो रहे हैं, उलमा पर, मशाइख पर, फना पर, फना पर। किसी ने अहले बैत पर इतराज किया तो किसी ने सहाबा पर इतराज किया, किसी ने ताबईन पर, किसी ने तबे ताबईन पर, यहां तक के नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर भी इतराज शुरू हो। जहां पर इतराज के लिए सोचना भी गलत है, क्या आदमी सोच सकता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक, नहीं। देखिए हमारा अकीदा क्या है, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो इल्म मिला अल्लाह की बारगाह से मिला, हकीकत है अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह फरमाता है अर रहमान व अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। अब ये क्या करते हैं, ये ढूंढ रहे हैं, फला वाकया हुआ देखो नबी को इल्म नहीं था, ये वाकया हुआ देखो नबी को इल्म नहीं था, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस हो, मादल्ला कमी हो। लेकिन ये नहीं हो सकता, जिसकी जात को खुदा ने बुलंद किया है उसे कौन पस कर सकता, जिसकी जात को जिसके जिक्र को वरफाना लका जिक्र ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब वो जिक्र ऐसे बुलंद हुआ कि जमीनों में आसमानों में मस्जिदों में मदरसों में खानकाहों में हर जगह जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अच्छा हमारा अकीदा क्या है? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब जानते हैं, ठीक है ना। अब ये हम पर फतवा ये लगाते हैं कि तुमने नबी को अल्लाह से मिला दिया, आलिमुल गैब व शहादत और लकीदा, भाई गैब का इल्म अल्लाह जानता है ना। तो कहते जब अल्लाह जानता है तो फिर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क्यों कह दिया ये भी जान, ये तो शिर्क हो गया। यानी जो चीज अल्लाह के लिए है वही तुम नबी के लिए साबित करो तो ये तो शिर्क हो गया। और कुरान ने कहा इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है। तो तुम तो सारे मुशरिक हो गए, ये जितने बरेलवी हैं जितने अहले सुन्नत हैं ये सब मुशरिक हैं, इसलिए कि इन्होंने नबी को खुदा से मिला दिया, मान अल्लाह नबी का इल्म खुदा के इल्म तक पहुंचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हम कहते पहले हमारा अकीदा समझो, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, अकीदा समझो फिर एतराज करो फिर फतवा लगाओ। अब सुनिए, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा, ठीक, हर छुपी हुई चीज को वो जानता है, जो हो चुका है वो जानता है, जो हो रहा है वो जानता है, जो आइंदा होने वाला है वो जानता है, जो हम सोच चुके हैं वो जानता है, जो हम सोच रहे हैं वो जानता है, और जो आइंदा सोचने वाले हैं वो भी जानता है। यही है ना, अल्लाह का इल्म जाती है, नबी का इल्म अताई है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह का इल्म जाती है, वो बिज़ात जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद जानता है। लेकिन नबी अल्लाह के बताने से जानता है, तो इसमें क्या शिर्क है? अगर आप ये कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानते हैं बिज़ात जानते हैं और अल्लाह भी बिज़ात जानता है तब शिर्क होगा। लेकिन हमारा अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला का इल्म जाती है, नबी का इल्म अताई है, अल्लाह ताला खुद जानता है, उसको कोई ना बताए वो फिर भी जानता है, और नबी की शान यह है नबी अल्लाह के बताने से जानता है, तो इसमें कोई शिर्क नहीं। सही है ना, इसमें कोई शिर्क नहीं। और कुरान ने कह दिया रहमान वल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। अच्छा, इल्म में कमी उस वक्त होती है कि या तो पढ़ाने वाला नाकिस हो, या पढ़ने वाला नाकिस हो, या जो किताब पढ़ाई जाए वो नाकिस हो, ठीक है ना, इल्म में कमी रह जाए। पढ़ाने वाला नाकिस यानी शागिर्द बड़ी मेहनत से पढ़ रहा है, किताब भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुदर्रिस है जो पढ़ाने वाला है उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता, तो क्या होगा, इल्म में कमी रह जाएगी। अच्छा, अगर पढ़ाने वाला मुस्तैद है, माहिर है, एक्सपर्ट है, उस्ताद है, मुदर्रिस, बेहतरीन मुदर्रिस, लेकिन शागिर्द जो है पढ़ने वाला वो नाकिस है, पढ़ने ही नहीं जानता, उसको शौक ही नहीं। एक दिन आया तो 10 दिन छुट्टी हो गई, फिर आया तो 1 महीने छुट्टी हो गई, या अगर पढ़ रहा है तो तवज्जो नहीं है, सबक याद नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इल्म में कमी रह जाए, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों कामिल हो, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी, जो उस्ताद पढ़ा रहा है वो भी पढ़ने में बहुत पढ़ाने में बहुत माहिर है, और जो शागिर्द पढ़ रहा है कस्बे इल्म कर रहा वो भी बड़े जौक शौक से पढ़ रोजाना सबक याद करता है, रोजाना हाजिर होता है, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इल्म नहीं। बात समझ में आ रही है? जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इल्म नहीं। मिसाल के तौर पर कोई डाइजेस्ट लेकर बैठ जाए जिसमें किस्से कहानियां हो, उन कहानियों का कोई सर पैर ना हो, झूठे वाकयात हो, झूठे किस्से हो, अब क्या होगा, पढ़ाने वाला भी मुस्तैद है, पढ़ने वाला भी मुस्तैद है, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वो उसमें इल्म नहीं है, नाकिस है, तो इल्म में कमी रह जाए। बात समझ में आई? आप ये याद रखें तो फिर अगली बात आपके समझ में आ जाएगी। इल्म में कमी उस वक्त रहती है या पढ़ाने वाला नाकिस, या पढ़ने वाला नाकिस, या जो किताब पढ़ाई जाए वो नाकिस। अब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ने वाले सैयदुल इंस वल जान, और जो किताब पढ़ाई गई उसमें हर शय का रोशन बयान, और वही है कुरान। तो फिर कैसे कमी रहे? कमी रहेगी नहीं। वो देने में सखी है, ये लेने में सखी है, और जो कुरान पढ़ाया जा रहा है वो तो उलूम व मारिफ का खजाना है। ना इधर कमी है ना उधर कमी है, उधर वो देने के लिए तैयार है, रसूल लेने के लिए तैयार। तो फिर इनमें कमी नहीं ना। इसीलिए कुरान ने कहा अर रहमान व अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। ठीक है ना? अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पढ़ा किससे पढ़ा? अल्लाह से। आपने सरकार की सीरत पढ़ी होगी ना? जब हम किसी की सीरत पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले उसकी तालीम का जिक्र आता है। कहां से इल्म हासिल किया? विलादत का बयान होता है ना, भाई ये साहब हैं, ये फला जगह पैदा हुए, इनका बचपन वहां गुजरा, फिर ये उस स्कूल में दाखिल हुए, उस मदरसे में दाखिल हुए, फिर ये कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटी में गए, यही होता है ना। अब ये बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस मदरसे से पढ़ा? किसी मदरसे का नाम? किस उस्ताद से इल्म हासिल किया? किसी उस्ताद का नाम नहीं। किसने पढ़ाया? अर रहमान व अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। अच्छा, वजह क्या थी? अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से ना पढ़वाने की वजह क्या थी? वजह भी तो होगी ना कोई। वजह ये थी कि देखो, जब आदमी किसी से इल्म हासिल करता है ना, तो जिससे इल्म हासिल करेगा वो होगा उस्ताद। ठीक है, आप हो गए शागिर्द। अब उस्ताद जब भी आएगा आप पर उसकी ताजीम लाजिम है ना? ताजीम लाजिम है ना? ये तो खैर यूनिवर्सिटी के लड़के जो अपने उस्ताद को वॉशरूम में बंद कर देते, जो उस्ताद की पिटाई भी लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं उस्ताद का, उस्ताद की कदर क्या है। जैसे एक बादशाह था, उसने क्या किया, उसका बेटा जो था शहजादा, वो एक उस्ताद के पास इल्म हासिल कर रहा। उसी मदरसे में कसाई का बेटा भी था, नाई का बेटा भी था, और जो दीगर मजदूर थे उनके बेटे भी थे। तो बादशाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे को इनसे अलग पढ़ाइए। उन्होंने कहा, क्यों पढ़ाऊं, ये शहजादा है इसीलिए? नहीं नहीं, सब साथ पढ़ेंगे। नहीं, आप बात समझे, ये खानदान की बात है, मेरा बेटा अलग पढ़ेगा, ये लोग अलग पढ़ेंगे। उनका नहीं, सब साथ पढ़ेंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक तजर्बा करके बताता। उस्ताद मोहतरम सबको साथ पढ़ाते रहे। एक दिन बादशाह ने उस्ताद को बुलाया अपने दरबार में, और अपने बेटे को शहजादे को उसको भी दरबार में बुलाया। एक कसाई का बेटा था, एक नाई का, एक और फला का किसी का, उनको भी बुलाया। और बादशाह ने हुक्म दिया, एक बच्चे को बुलाया जो इसी के पास इल्म हासिल कर रहा था, अपने उस्ताद के मुंह पे थप्पड़ मारो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं मारूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई, मारता है या नहीं अभी तेरा मैं सर कलम कर दूं। उसने जाके मार दू, वो उस्ताद बेचारा मुंह देख कर। बादशाह ने कहा, बैठ जाओ। दूसरे को बुलाया, अपने उस्ताद के मुंह पे थप्पड़ मारो। उसने कहा, नहीं। इसने फिर तलवार उठाई, अभी मैं सर कलम कर दूंगा। उसने जाकर थप्पड़ मार दी। फिर इसने अपने बेटे को बुलाया, शहजादे को, कहा, बेटा अपने उस्ताद के मुंह पे थप्पड़ मारो। उसने कहा, नहीं। बादशाह ने तलवार उठाई, मैं सर कलम कर दूंगा। उसने क्या किया, सर झुका दिया। तलवार के सामने सर झुका दिया, सर कटवा दूंगा। उस्ताद के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा। उसने कहा यह है खानदानी बात, इसलिए मैं कह रहा था इनको तुम कितने ही पढ़ा दो ये वही रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं इनको अलग पढ़ाओ उसको अलग पढ़ाओ। बात समझ में आई? उस्ताद की तादीम हर एक पर लाजिम है, और अगर कोई तादीम ना करे, अपने उस्ताद की बेइज्जती करे, गुस्ताखी करे, गालियां दे, समझ लो ये असल नसल नहीं है। असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। बुजुर्गों ने एक बात कह दी, वो अपनी जगह अटल। खैर, अब बात यहां से चली कि उस्ताद की तादीम लाजिम है, ठीक है ना। आप जिससे इल्म हासिल करेंगे, आप पर लाजिम है उसका अदब करें, एहतराम करें। इसीलिए ऐसा होता है, एक आदमी इल्म हासिल करते करते मौलवी बनता है, फिर वो मुफ्ती बनता है, फिर वो मुहद्दिस बनता है, फिर वो फकीह बनता है, फिर वो उस्तादुल उलमा बन जाता है, होता है ना। अब किसी जलसे में ऐलान हुआ कि ये साहब आ रहे हैं उस्तादुल उलमा, ये मुफ्ती आदम, ये फकीह आदम, ये मुहद्दिस आदम, ऐलान हुआ, उसी जलसे में उनके उस्ताद भी आ गए। ये मिसाल दे रहे, उसी जलसे में उनके उस्ताद भी आ गए, तो क्या कहा जाएगा? ये अपने वक्त के मुफ्ती आजम हैं, लेकिन इनके उस्ताद ये है। बात समझ रहे हो? ये अपने वक्त के मुहद्दिस आजम हैं, लेकिन इनके उस्ताद ये है। और वो मुहद्दिस आजम कितने बड़े बन जाएं, अगर उसी महफिल में उनका उस्ताद आ जाए, उनको खड़ा होना लाजिम है या नहीं? और अगर नहीं होंगे तो नाखलफ समझे जाएंगे। ये कैसा आदमी अपने उस्ताद की ताजिम नहीं करता। जब ये बात आपने समझ ली, अब अगली बात आप समझिए, जो जिससे इल्म हासिल करता है उसका अदब लाजिम है, उसका एहतराम लाजिम है, उसके लिए खड़ा होना लाजिम है। बिना तजबी हो तमसील, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से इल्म हासिल करते, अगर किसी के सामने जानवे तलम करते, अगर किसी से कस्बे इल्म कस्बे फैज करते, तो लाजिम था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका अदब करें। लाजिम था ना, लाजिम था कि उसके सामने झुके। और खालिक कायनात ये गवारा नहीं करता कि मेरा महबूब मेरे बजाय किसी के सामने झुके। ऐ रसूल, अगर आप किसी से पढ़ेंगे तो उसका अदब आप पर लाजिम होगा, उसके सामने झुकना आप पर लाजिम होगा, और मैं खुदा ये गवारा नहीं करता कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी के सामने झुके। इसलिए जो कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कुछ दूंगा मैं आपको दूंगा। अर्रहमान अल्लाम अल कुरान, महबूब आप मेरे सामने झुकेंगे, पूरी कायनात आपके सामने झुकेगी, आप मुझसे इल्म लेंगे, ये सब आपसे इल्म लेंगे। अर्रहमान अल्लाम अल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा था, ठीक है ना। और कुरान में हर चीज का बयान। अच्छा, अब अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वा अल्लामा का मालम तकुन तालम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिखा दिया। क्या सिखा दिया? अब यहां किसी इल्म की तायीन नहीं, कौन सा इल्म सिखाया? मालम तकुन तालम, महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया, जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। अच्छा, इसमें हिकमत क्या थी? अगर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता हमने अपने महबूब को शरीयत का इल्म सिखा दिया, तो दुनिया वाले कहते कि तरीकत नहीं जानते थे। अगर खुदा कहता तरीकत का इल्म सिखा दिया, तो लोग कहते हकीकत नहीं जानते थे। अगर अल्लाह फरमाता हकीकत का इल्म सिखा दिया, तो फिर कहते मारिफत नहीं जानते थे। अगर अल्लाह कहता कि हमने सारे दुनियावी सारे उलूम सिखा दिए, तो फिर कहते अभी दुनियावी उलूम बाकी हैं वो नहीं जानते थे। इसीलिए खुदा ने किसी इल्म को मुअय्यन नहीं किया कि हमने अपने महबूब को ये सिखाया। वाल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया, जो कुछ नहीं जानते थे। अब कोई कह नहीं सकता कि क्या नहीं जानते, वो कहते ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो कुछ नहीं जानते थे, मालम तकुन तालम, वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आपके रब का ये फजल अजीम है। हकीकत है ना, जो कुछ सिखाया अल्लाह ने सिखाया, और जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। तो आपको ये कह नहीं सकता कि फला नहीं जानते थे, फला चीज नहीं जानते थे। तीसरी आयत सूरह जिन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिहि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को इत्तला नहीं देता सिवाय अपने पसंदीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय अपने पसंदीदा रसूल के। अच्छा लोग कहते हैं कि देखो जी आधी आयत पढ़ते हैं, पूरी नहीं पढ़ते, आधी पढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिहि अहदन, अल्लाह तबारक व तआला यानी गैब जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता। कहने देखो अल्लाह तो फरमा रहा है कि वो गैब किसी को बताते ही नहीं, गैब से किसी को मुतला नहीं करता, और तुम कह रहे हो तो नबी गैब का ही जाने। हमने कहा आगे भी तो पढ़ो इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, सिवाय अपने पसंदीदा रसूल के, सिवाय अपने पसंदीदा रसूल के। अब पसंदीदा रसूल कौन है? जाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं ना जमीन को पैदा करता ना आसमान को पैदा करता। लौला का लमा खलकतुल अफलाक, लौला का लमा खलकतु दुनिया, अगर आपको पैदा ना करता तो ना जमीन को पैदा करता ना आसमान को पैदा करता ना दुनिया को पैदा करता, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता अगर मैं आपको पैदा ना करता। इतनी मोहब्बत अपने रसूल से, तो पसंदीदा रसूल जाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने वादे तौर पर फरमा दिया गैब जानने वाला अपने गैब से किसी को मुतला नहीं करता, उस गैब की इत्तला नहीं देता सिवाय पसंदीदा रसूल के, और पसंदीदा रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका मतलब है कि बताया तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और यही हमारा अकीदा है। अच्छा गैब के माना है छुपी हुई की, गैब के माना पोशीदा यानी जो जाहिर ना हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो चीज हमारे लिए गैब हो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गैब है, जरूरी नहीं। कुछ चीजें हमारे लिए गैब हैं हुजूर के लिए नहीं, मसलन अल्लाह की जात हमारे लिए गैब है रसूल के लिए नहीं है, फरिश्ते हमारे लिए गैब हुजूर के लिए नहीं है, सरकार ने देख लिया, जन्नत और जहन्नम हमारे लिए गैब लेकिन हुजूर के लिए नहीं। भाई मेराज पर गए ना, फरिश्तों को देख लिया, जन्नत और जहन्नम को देख लिया, सारी सजाओं को देख लिया, सारी जजाओं को देख लिया, हर चीज को देख लिया, यहां तक के रब को भी देख लिया। जब सरकार तशरीफ लाए लोगों ने पूछा आपने देखा है, 1,24,000 पैगंबर एक कमोबेश इस दुनिया में आए, सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, उसके वाहिद होने की गवाही दी, उसके यक्ता होने की गवाही दी, लम यलिद वलम यूलद होने की गवाही दी। लोगों ने सवाल किया जिसकी गवाही आप दे रहे हैं क्या आपने उसे देखा है? उन्होंने कहा देखा नहीं है, लेकिन ईमान है यकीन है जिब्रील अमी आते हैं वही आते हैं, ठीक है ना, आते रहे। सबसे आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने अल्लाह की वैदानियत की गवाही दी, उसके यक्ता होने की गवाही दी, उसके अकेला होने की गवाही दी, उसके लम यलिद वलम यूलद होने की गवाही दी। लोगों ने वही सवाल किया जिसकी गवाही आप दे रहे हैं आपने उसको देखा है? फरमाया रहे तो रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा। इसीलिए किसी ने लिखा सलाम उस पर के जिसने इसको उसको सबको देखा है, सलाम उस पर के जिसने इसको उसको सबको देखा है, सलाम उस पर के जिसने चश्मे सर से रब को देखा है, سلام اس پر کے جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. رحمت ربی عز و جل فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پسندیدہ رسول, اللہ کے محبوب, اللہ نے جتنا بتایا ان کو بتایا اور غیب سے ان کو آگاہ فرما دیا. ٹھیک, اب آئیے چند احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے یہ علم ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا. حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں, انصاری صحابی ہیں اور ان کی کنیت ہے ابو زید. محدثین کے نزدیک ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوئے اور ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پر محبت کے ساتھ اپنا دست مبارک پھیر دیا. جیسے کوئی بچہ ہو, کوئی ہمارا دوست ہو, ہم محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا, تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرماتے ہوئے, شفقت فرماتے ہوئے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کے لیے دعا فرما دی. اب آپ دیکھ لیں دعا کس نے کی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ہوا کیا, 100 سال ان کی عمر تھی, نہ داڑھی کے بال سفید ہوئے نہ سر کے بال, اور چہرہ اسی طرح حسین و جمیل تھا, سرکار کی دعا قبول ہو چکی. کہتے ہیں میرے صرف چند بال سفید تھے, باقی سب کے سب سیاہ تھے. 100 سال کی عمر میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر. حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار نے نماز فجر پڑھائی, حضور نے امامت کی, اور نماز فجر کے بعد اپنے منبر پر رونق افروز ہوئے, خطاب کیا, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کتنا ٹائم لگا فجر سے ظہر تک. ظہر کا وقت ہوا, آقا منبر سے نیچے تشریف لائے, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر منبر پہ رونق افروز, خطاب کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. عصر کے لیے منبر سے نیچے تشریف لائے, عصر کی نماز کی, امامت کی, پھر منبر پر رونق افروز, یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا. تو کون سا وقت ہوا بتائیے؟ ارے مغرب نہیں پڑھی کیا؟ پڑھتے ہو نا, مغرب کا وقت ہو گیا. پھر منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرماتے ہیں اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے آفرینش, یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے حالات ایک کتاب کی طرح کھول کر بیان کیے. ایک دن میں ہے کوئی اتنا بڑا خطیب؟ فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پورا دن بھی لگایا جائے تو شروع سے لے کر آخر تک کے حالات کیسے بیان کیے جا سکتے؟ مشکل ہے نا. اگر سلسل آدمی بولتا رہے, فجر سے شروع کیا تو ظہر ہوئی, ظہر سے شروع کیا تو عصر, پھر مغرب, پورا دن گزر گیا, قیامت تک کے حالات. اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا زمانہ, کتنے حوادث, کتنے واقعات, جو کچھ ہونا تھا سرکار نے سب بیان کر دیا. علماء نے لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ ایک دن میں شروع سے لے کے آخر تک کے تمام حالات بیان کر دیے. اور حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے سب سے زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا, یعنی جو کوئی سرکار نے بیان کیا نا जिसने सबसे ज्यादा याद रखा वही सबसे बड़ा, और जिसने भुला दिया उसने भुला दिया। यह हदीस शरीफ मिश्कात बाबुल मौजदात में मौजूद है। दूसरी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। पुश्ते मुबारक पर दोनों शाने हैं ना, उसके दरमियान फरमाते अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, और उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। फिर जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में है सब मैंने जाना। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, फवदा यदहु बैन कतफैया फअजदत फरतहा बैन सदयैया फअलिमत मा फि समावात वल अर्थ। मैंने वो सब जान लिया जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, ये सब मैंने जान लिया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने माकाना वमा यकून का इल्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। तीसरी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया को उठाकर इस तरह मेरे सामने पेश फरमाया कि तमाम दुनिया को और इसमें कयामत तक जो कुछ होने वाला है मैंने उस सब को देख लिया। अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने पेश किया, इसमें जो कुछ हो रहा है और कयामत तक होने वाला है, आका फरमाते मैंने उन सब को देख लिया। इससे यह पता चला कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया। चौथी हदीस, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जहर के बाद अपने मिंबर पर रौनक अफरोज हुए। पहले कयामत का जिक्र किया और फिर फरमाया कि इससे पहले बड़े बड़े वाकयात जहूर पजीर होंगे। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठे बैठे फरमाया, पूछो मुझसे सवाल करो, मैं अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब न दे। और ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ दोहराई, पूछो सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो मुझसे पूछो। हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल के आलम में आए। अच्छा, इसका पसमंजर ये था, बाद उलमा ने ये भी लिखा कि मुनाफिकीन ये कहते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुछ जानते नहीं, हम तो इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, फिर हम काफिरों के पास जाके कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ, ये तो कुछ जानते नहीं। इस चीज को रद्द करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछो मुझसे सवाल करो। तो हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का नाम क्या है? फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम हुजाफा है। हुजूर ने फिर सवाल किया, सलूनी पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो, मैं आज मिंबर से नहीं हटूंगा जब तक कि तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब न दे। जब ये बात हुई, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हुजूर के करीब पहुंचे, दो जानू बैठे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह को रब मानते हैं, हम दीन को हक मानते हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। और ये बात उन्होंने तीन मरतबा दोहराई, तीन मरतबा। क्यों? उन्होंने देख लिया सरकार गुस्से के आलम में, जलाल के आलम में बार बार कह रहे मुझसे पूछो। हुजूर ये बताना चाहते थे कि तुम ये मत समझना मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो भी सवाल करना हो मुझसे करो, मैं आज मिंबर से नहीं उतरूंगा जब तक एक एक सवाल का जवाब न दे। सहाबा कहते हम सब खामोश, बल्कि बहुत से सहाबा रोने लगे, डर गए, रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। तब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने आगे बढ़े, दोजानों बैठकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को रब मानते हैं, दीन को ज़ाबता हयात मानते हैं और आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं। ये बात तीन मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाई तो सरकार दोआलम अलैहि सल्लतु वसलाम खामोश। उसके बाद आपने कुछ नहीं फरमाया, यानी ये सवाल को दोबारा दोहराया नहीं कि मुझसे पूछो। फिर सरकार ने सिर्फ इतना फरमाया कि इस चार दीवारी के अंदर जन्नत मुझ पर पेश की गई और मैंने सब कुछ जान लिया, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होना है सब मैंने जान लिया। औ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुनाफिकों को अपनी मस्जिद से निकाला, जो लोग इतराज करते थे ना। अच्छा देखिए, मुनाफिक वो होता है जो आपके पास हो ना, कहे कि मैं तो आपके साथ, और दुश्मन के पास जाए तो कहे मैं तुम्हारे साथ। यानी बज़ाहिर मुसलमान थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, और जब काफिरों के पास जाते हम तो तुम्हारे साथ, हम मुसलमानों के साथ थोड़ी, हम तो उनको धोखा दे, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो ये समझ रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हालांकि हम तो तुम्हारे साथ। पर जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आया, एक दिन आपने सारे मुनाफिकों को नाम लेकर निशानदेही फरमा दी। वो जो कह रहे थे ना हमें नहीं जानते, हुजूर ने फरमाया फला बिन फला अंता मुनाफिक उखरुज मिनल मस्जिद। उसका नाम लिया और उसके बाप का नाम लिया, फरमाया तू मुनाफिक है, उखरुज मिनल मस्जिद, मेरी मस्जिद से निकल जा। वो खड़ा हो गया घबरा कर, वो निकल गया, दूसरे को खड़ा किया उसको निकाल दिया, तीसरे को खड़ा किया उसको निकाल दिया। जितने मुनाफिकीन थे आका ने सबको अपनी मस्जिद से बाहर निकाल दिया और बता दिया, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है, मेरे रब ने मुझे हर चीज की इत्तला कर दी, मैं सब कुछ जानता हूं। तो हमारा अकीदा भी यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बताने से सब कुछ जानते हैं, अल्लाह के बताने से सब कुछ जानते थे। अब देखें हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला सरकार के चचा, इस्लाम लाने से कब्ल जंगी कैदी बनकर आए, और तरीका यह था कि जो कैदी आते थे वो फिदिया देते थे, उनको आजाद कर दिया जाता था, माल की सूरत में या किसी भी सूरत में मुसलमानों को फिदिया अदा करते। तो हजरत अब्बास जब आए रजी अल्लाह तआला, मुसलमानों ने कहा फिदिया दे, आपको आजाद कर दिया जाए। इन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। हालांकि जब ये वहां से चले थे तो सोने की ईंटें इनके पास थी, सोने की ईंटें। तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल अलहकी में खामोशी से पोशीदा तौर पर अपनी अहलिया को दी और कहा कि ये रख लो, जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर ले, मैं जंग पे जा रहा हूं। अच्छा जब यहां पर आए, कैदी बने, मुसलमानों को फतह हो गई, ये कैदी बनकर मुसलमानों की कैद में आ गए और मुसलमानों ने सवाल किया जी फितिया दे, कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चचा आप वो बात क्यों छुपा रहे हैं जो आप पोशीदा तौर पर सोने की ईंटें अपनी अहलिया को देकर आए। हैरान रह गए, तीसरा तो कोई था ही नहीं, इनको किसने बता दिया, मैंने जब वो ईंटें दी हैं तो मैं था या मेरी अहलिया थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप ये बात क्यों छुपा रहे हैं, आप तो सोने की ईंटें अपनी अहलिया को देकर आए हैं। जैसे ही ये सुना तो उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया। शायर ने लिखा जनाबे हजरते अब्बास पे राशा हो गया तारी, के पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी, ख्याल आया सन्मा नेको पत पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के
दिल की बातें जान जाते हैं।
घबरा परेशान हो गए, इनको किसने बता दिया? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीजें बताई जो किसी को पता नहीं थी। आप कहें हुजूर को किसने बताया, तो जवाब होगा अल्लाह ने बताया। इसलिए कि अल्लाह का इल्म जाती है, नबी पाक का इल्म अताई है। रब ने जो कुछ चाहा अपने हबीब को बता दिया। इसी तरह अफसोस के हैं, लोग कहते हैं जी नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, नबी ये नहीं जानते थे, नबी वो नहीं जानते थे। अरे नबी ने उन चीजों की खबरें दे दी जो आपके विसाल के बाद होने वाले थे। हिजरत का मौका था, आपने वाकया सुना है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला सरकार के साथ थे। तो ये दोनों चलते 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 जब मक्के से थोड़ा दूर चले गए, तो अबू जहल और दीगर जो सरदार थे उन्होंने देखा कि ये तो दोनों चले गए, अब इनको कैसे पकड़ा जाए। तो उन्होंने एक ऐलान किया, जो भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को पकड़ कर लाएगा या इनकी खबर देगा, उसको एक जोड़ा, एक घोड़ा और इतने दिरहम और दीनार, हजार जो है कुछ रकम रखी, इतनी दी जाए। लोग दौड़ पड़े। उन्हीं में एक हजरत सराका रजी अल्लाह ताला जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो भी अपने घोड़े पे बैठकर रवाना हो गए। अच्छा, अब ये जब ये दोनों चल रहे हैं तो खौफ है कि कोई आ ना जाए पीछे से। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। हुजूर ने कहा अबू बकर भी क्या कर रहे हो भाई, साथ चलने वाला तो साथ चलता है ना, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे, कभी हुजूर के दाएं, कभी बाएं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे ख्याल आता है कोई दाएं जानिब से हमला ना कर दे तो मैं इधर चलना शुरू कर दू, फिर ख्याल आता है बाएं जानिब से हमला ना कर दे तो यहां चलना शुरू कर दू, ख्याल आता है कोई अचानक आगे से हमला ना कर दे तो मैं आगे चलता हूँ, ख्याल आता है कि पीछे से हमला ना कर दे तो पीछे चलता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप शमे रिसालत हैं, अबू बकर परवाना है, परवाने का काम ही यह है शमा के गिर्द रख करता रहे, परवाने का काम ही यही है। अच्छा, खौफ किसको है? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला सरकार को नहीं, इत्मीनान, सुकून। अब क्या हुआ, हजरत सराका घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते करीब पहुंच गए। सिद्दीक अकबर ने देखा पीछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर ये पहुंच गया, ये हमारे सर पे। ला तहजन इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ। अब ये जब करीब आए, जमीन ने इनकी घोड़े के पैर पकड़ लिए, कलाबाजी खाई, गिर गए। जब गिरे तो फौरन माफी मांगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाऊंगा काफिरों के पास, मैं कहूंगा मैंने नहीं देखा, मैंने इन दोनों को नहीं देखा। फरमाया घोड़े पर बैठे, फिर ख्याल आया कि अगर बता दूं तो क्या है, फिर जमीन ने पैर पकड़े, फिर कलाबाजी खाई, फिर गिरे, फिर सच्चे दिल से तौबा की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं नहीं बताऊं। हुजूर ने फरमाया था, सरकार ने उसी वक्त इन्हें एक खुशखबरी दी। किसको? हजरत सराका रजी अल्लाह ताला अभी मुसलमान नहीं हुए। फरमाया, ए सराका, वो वक्त कैसा होगा जब तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा जो था ना, बहुत बड़ा बादशाह था और सुपर पावर, यानी आज की जबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस तरह समझा सकता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपको ट्रंप का कोट पहनाया जाएगा, ये कह सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं कहते। आप कहेंगे ट्रंप, अरे सुपर पावर अमेरिका, उसका सदर, उसका कोट, ये कैसे हो सकता है, यही होगा ना। उस वक्त की सुपर पावर, वो किसरा जो सुपर पावर समझा जाता था, उसकी हुकूमत ताकतवर थी,
आका फरमा रहे हैं वो वक्त कैसा होगा, तुम्हें उसके कंगन पहनाए जाएंगे। वो हाथों में सोने के कंगन पहने, जो औरतें पहनती है ना वो सोने के। खामोश हो गए। कब बशारत दी? हिजरत के सफर के दौरान। और पूरी कब हुई? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर। सरकार ने पर्दा फरमा लिया, सिद्दीक अकबर मसंद खिलाफत पर 2 साल वो खलीफा रहे, उनका विसाल हो गया। फिर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौर में वो शहर फतह हुआ और उसको शिकस्त हुई, वो सुपर पावर खत्म हो गई, उसकी सारी पावर फारूक आजम ने खत्म कर दी। फारूक आजम की पावर के आगे सारी सुपर पावर खत्म हो गई। उसके कंगन माले गनीमत में आए, मस्जिद नबवी के फर्श पर माले गनीमत है। रसूलुल्लाह का बाजबरूद जानशीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। आपने कंगन देखे, कहा सुराका कहाँ है, बुलाओ। उनको हाजिर किया गया। तुम्हें याद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? वो वक्त कैसा होगा जब तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हैं। कहा हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें कंगन पहना दूं, आका की बशारत पूरी कर। कंगन पहना दिए गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हो गई। सच्चे नबी की हर खबर सच्ची। याद रखो, जो सच्चा होता है ना उसकी हर खबर सच्ची। कोई एक बात बता दो और एक पेशिंग कोई ऐसी बता दो जो आका की जबान से निकली हो और पूरी ना हुई। और झूठा नबी गुलाम अहमद कादियानी, जितनी खबरें उसने दी, जितनी पेशिंग गोइयां की, सबके सब झूठी निकली। एक औरत थी जिसका नाम था मोहम्मदी बेगम, उसकी शादी हुई भी थी। इसने कहा कि इसको तलाक हो जाएगी या इसका शौहर मर जाएगा, इसका निकाह मुझसे हो जाएगा। किसने कहा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। और उससे पहले खुद ही मर गए। ये कैसी बशारत हुई भाई? इसी तरह और बहुत सारी बशारतें दी, पेशिंग गोइयां एक पूरी नहीं हुई। और मेरे रसूल की शान ये है, जो उनकी जबान से निकल गया वो हक है, वो ही सच। कुरान ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ। जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वो तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। तो बात समझ में आई? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया एक एक हर्फ पूरा हुआ। और सरकार की शान क्या थी? आप देखेंगे जब जमात होती है तो सबका चेहरा किस तरफ होता है? किस तरफ होता है? क़िबले की तरफ। अरे नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो फिर बोलो इसमें शर्मानी की क्या बात? क़िबले की तरफ। और इमाम का चेहरा आपकी तरफ नहीं, क़िबले की तरफ। ठीक है ना? इमाम का चेहरा भी क़िबले की तरफ, मुक्तदियों का चेहरा भी क़िबले की तरफ। अब इमाम को क्या पता कि मुक्तदी क्या कर रहे हैं? कुछ पता चलेगा भाई? जहां हमारा चेहरा होगा, अब मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूं, मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या हो, ठीक है, लेकिन आपका चेहरा इधर है, आप देख सकते हैं ना। जहां इंसान का चेहरा, जहां उसकी आंखें, वो सामने देखेगा, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा। तो इमाम कोई भी हो उसको नहीं पता कि मुक्तदी क्या कर रहे हैं। अब आओ अपने रसूल की शान देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया हल तरौन क़िबलती हा हुना फवल्लाहि मा यक़्फ़ा अला खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी लराकुम मिन वरा ज़हरी। खुदा की कसम ये मत समझना कि मेरा चेहरा आगे है, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं, जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। और मुझसे ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू पोशीदा। दो चीजें बयान की, ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है और ना तुम्हारा खुशू पोशीदा। अच्छा, अब एक बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये थी कि रुकू भी पोशीदा होना चाहिए था कि सरकार का चेहरा उधर है ना, पीछे नहीं देख सकते। अब पता नहीं सहाबा कैसे रुकू कर रहे हैं, कोई किस अंदाज से कर रहा है, कोई किसी अंदाज से। फरमाया तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा नहीं। चलो आदमी ये जान ले कि रुकू जो है वो जाहिरी कैफियत का नाम है। रुकू जाहिरी कैफियत का नाम है ना। जब हम रुकू करते हैं तो झुक जाते हैं, अपने घुटनों पर हाथ रख के हम झुकते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये आदमी रुकू कर रहा है, ठीक है ना, ये जाहिरी कैफियत है। चलो उसके मुताबिक तो कहा जा सकता है कि रुकू पोशीदा नहीं, लेकिन फरमाया ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू पोशीदा है। और खुशू जो है वो दिल की कैफियत का नाम है, खशियत डर खौफ। डर कहां होता है? दिल में। खशियत होती है दिल में। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है ना तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा है। रुकू जाहिरी कैफियत का नाम है, खुशू बातनी कैफियत का नाम है। आका ये बताना चाहते हैं मेरे शान ये है, मैं तुम्हारे जाहिर को जैसे देखता हूँ ऐसे बातिन को भी देखता हूँ, मैं जैसे तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ ऐसे तुम्हारे दिल को भी देखता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया। तो क्या फरमाया? हल तरौना किबलती हाहुना, तुम क्या देखते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ है? फवल्लाहि खुदा की कसम, मा यक्फा अला खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी लराकुम वरा ज़हरी, तुम्हारा ना खुशू मुझसे पोशीदा है ना रुकू पोशीदा है, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। यह हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। अब आइए आगे देखें। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाने से कब्ल जब मक्का फतह हुआ ना, अच्छा मक्के की फतह होने का किसी को भी यकीन नहीं था कि मक्का फतह हो सकता है। मुसलमानों की इतनी जमीयत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, समाने हरब नहीं है, काफिर कहते थे ये तो नामुमकिन बात, ऐसा नहीं हो सकता। और उधर अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दे रहा है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी तो आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल होंगे, फौज दर फौज दीन में दाखिल होंगे। अल्लाह की मदद और नुसरत आई और कैफियत क्या हुई? हुजूर अलैहिस्सलाम फातेहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। अच्छा, जो फातेह होता है वो मफ्तू को हर तरीके से कुचलने की कोशिश करता है। आप पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखें, जिन बादशाहों ने जिन शहनशाहों ने दूसरे शहरों को फतह किया, दूसरे मुल्कों को फतह किया, वहां कत्लेआम कर दिया, उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, शहर को उजाड़ दिया। और मक्का जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम पर संगवारी की गई, नमाज पढ़ते में ऊंट की ओजड़ी आपकी पुश्ते मुबारक पर डाली गई, गंदगी उछा ली गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए, हर किस्म का जुल्म किया गया, सहाबा को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, अहले बैत पर जुल्म किया गया। अब क्या है? सरकार ऊंटनी पर सवार है और मक्का में दाखिल हो रहे, सहाबा का जम्मे गफीर हुजूर के साथ, और सब नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद कर रहे, और इतनी जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्के की पहाड़ियां गूंजने लगी। अब कैफियत क्या है? काफिर डर रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, देखो हमारे साथ क्या करेंगे। हर कोई अपना जुर्म याद कर रहा है, एक कहता है मैंने तो इनको पत्थर मारे थे, वो कहता है मैंने तो इनको गालियां दी थी, वो कहता है नमाज पढ़ते में ऊंट की ओजड़ी मैंने गिलादत इनके ऊपर डाली थी, वो कहते हैं मैंने इनके अहले बैत के घर वालों को तंग किया था, मैंने इनके सहाबा को बेदर्दी के साथ शहीद किया था, सब डर रहे देखो हमारे साथ क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फातेहाना शान से दाखिल हुए, फरमाया ला तसरिब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, तुम सबको मैंने माफ कर दिया, तुम सबको माफ कर दिया। फरमाया जो तलवार रख दे उसके लिए अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसके लिए अमान है। अमान अमान की ऐसी सदा बुलंद की कि जितने भी थे वो सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह के हबीब ने सिर्फ शहर को फतह नहीं किया, दिलों को भी फतह कर लिया, दिलों को भी फतह कर लिया। अच्छा, हजरत अबू सुफियान वो कहते हैं कि मैंने जब ये देखा कि मक्का फतह हो गया तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था, काश मुझे एक लश्कर मिल जाए जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं उनसे मुकाबला कर। दिल में सोच रहे, किसी से कहा नहीं, ये बात याद रखिए, किसी दोस्त से, किसी अपने साथी से कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते मैंने दिल में सोचा मुझे एक लश्कर मिल जाए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करूं। अचानक मैंने देखा किसी ने मेरे पुष्प पर हाथ रखा, मैंने पलट कर देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वसल्लम। सरकार ने फरमाया अबू सुफियान ये कभी नहीं हो सकता, मक्का फतह हो चुका है। यानी जो तुम सोच रहे हो ये कभी नहीं हो सकता। फरमाते मैं हैरान रह गया, ये कैसे, किसने बताया? अर रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ बताया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और हैरत की बात क्या है, हैरत की बात यह है, आज जो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का, इल्मे गैब का इनकार करते हैं कि नहीं जानते थे, उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि कयामत तक होने वाले वाकयात किसने बताए। सारी अलामतें मौजूद है ना, सही अहादीस मौजूद हैं। आका ने फरमाया जब सरकारी माल जाती मिल्कियत बना लिया जाए, जब अमानत में खयानत की जाए, जब जिनाकारी और शराबखोरी आम हो जाए, जब धोखा दही आम हो जाए, जब इंसान दोस्त का वफादार और वालदैन का नाफरमान हो, जब दीन पर चलना ऐसा हो जैसा कि आग पर चलना हो, ये सारी चीजें जब हो जाएं, तो फिर अल्लाह के गजब का इंतजार करो कि सिर्फ आंधी की सूरत में आए या चेहरे मस्त होने की सूरत में। सारी अलामतें मौजूद, और कितनी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कितनी निशानियां बाकी हैं, फिर भी कह रहे नबी को इल्म नहीं। कितने अफसोस की बात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे हालात बयान फरमा दिए, मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं, अगर हम उनको पढ़ें उन पर अमल करें तो पता चल जाए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म क्या था। फिर याद रखिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह का इल्म जाती है, नबी का इल्म अताई है, अल्लाह ताला खुद जानता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताने से जानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज हम मुसलमान होकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को माजल्ला सुम्म माजल्ला घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये किसने बता दिया, ये किसने बता दिया। और अगर कहो कि हुजूर को इनमें गैब है, तुमने तो नबी को खुदा से मिला दिया। हुजूर मदद करते हैं, तुमने तो नबी को खुदा से मिला दिया। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने एक जात ऐसी बनाई कि ना उनसे पहले ना उनके बाद, एक ही जात बनाई, हुस्नो जमान जाहो जलाल फज़्लो कमाल जूतो नबान, हर चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में रख दी। मुझे देखना हो तो मेरे महबूब को देख, मुझे देखना हो तो मेरे महबूब को देख लो, मेरी कुदरत और ताकत को देखना हो तो इनकी ताकत को देख लो। जमीन पर बैठकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करें तो वापस पलट आए। अरे जब नबी की कुदरत और ताकत ये है तो फिर खुदा की ताकत क्या है। यही वजह है कि मेराज की रात जब सरकार की सवारी गुजरी, फरिश्तों ने अर्ज की मौला हम भी ज्यारत कर ले, अल्लाह ने फरमाया ज्यारत कर लो। सारे फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, फरिश्तों की निगाह हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़ी, उनकी जबान से निकला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। फरिश्ते ये सोच रहे थे जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा हो, जब संवरने वाला ऐसा है तो संवारने वाला कैसा होगा, जब निखारने वाला ऐसा है तो निखारने वाला कैसा होगा, अरे जब नबी ऐसा है तो फिर खुदा कैसा होगा। खुदा को हम नहीं देख सकते, अल्लाह ने अपने हबीब को भेज दिया, इनको देख लो। सरकार ने फरमाया मन रहा नहीं फकत रहा, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात एक ही जात बनाई, उन्हीं से मोहब्बत करो, उन्हीं से उल्फत रखो, उन्हीं से अकीदत रखो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलो, इंशाअल्लाह ताला यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। हमने इब्तिदा में आपको यह बताया था कि हमारा मौजू है इल्म और अमल, ठीक है ना, इल्म और अमल। लेकिन इल्म पर ही सारा टाइम गुजर गया, अमल का तो टाइम ही नहीं मिला, अमल का टाइम नहीं मिला ना। नहीं, कल इंशाअल्लाह अमल पे गुफ्तगू हो, ठीक है। आप हज़रात इसी ज़ौक और शौक के साथ तशरीफ लाएं, क्योंकि मौजू अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमने रखा था इल्म और अमल, लेकिन इल्म के मुतालिक जो बयान किया गया उस पर सारा टाइम निकल गया। कल इंशाअल्लाह ताला अमल पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।